Шидэж. Шидэж. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत क्षितिज कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अश्विना का करजोर अभिवादन। सोमवार 14 अप्रैल को विश्व हिंदी सचिवालय में डॉक्टर माधुरी जी के नेतृत्व में हिंदी कहानी पठन गतिविधि का आयोजन हुआ था। उसमें 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षाओं के छात्रों ने भाग लिया था। सभी छात्रों ने बड़े प्रशंसनीय ढंग से वहां पर दी गई कहानियों को पढ़ा था। आज बड़ी खुशी की बात है कि उस गतिविधि में भाग लेने वाली एक छात्रा सानवी और उसके अभिभावक डॉक्टर काशीनाथ जी यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए हम अभिभावक डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी से इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पहले यह बता दूं कि डॉक्टर काशीनाथ जी सरकारी पाठशाला में डिप्यूटी हेडमास्टर हैं और वे सायंकालिक हिंदी की कक्षाएं भी चलाते हैं। डॉक्टर काशीनाथ जी नमस्ते।
नमस्कार बहन जी।
क्षितिज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर जी, आजकल बच्चे अंग्रेजी फ्रेंच पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हिंदी की बारी आती है तो उनकी रुचि घट जाती है। पिता होने के नाते आप अपने बच्चों में हिंदी पढ़ने में रुचि कैसे जागृत करते हैं, कृपया हमें बताइए।
क्षितिज कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मेरा करजोर अभिवादन। हिंदी से मेरा नाता बहुत पुराना है। वैसे भी तो आपको पता है कि जो पुरानी पीढ़ी थी भोजपुरी से जुड़ी हुई थी और हम लोग भोजपुरी बोलते थे। अपने पिताजी को हिंदी और दादी जी को भोजपुरी बोलते हुए हम लोग हिंदी के शब्द सीखते थे, हिंदी की कहानियाँ सीखते थे और उस समय मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, इसलिए हम पुस्तकें भी पढ़ते थे। आजकल बच्चों के मन में हिंदी के प्रति उतना लगाव नहीं है, क्योंकि जो हिंदी की पढ़ाई हो रही है वह केवल वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है और वैज्ञानिक बातें उनको सिखाई जा रही है। अगर हम बच्चों को थोड़ा बहुत कहानियाँ पढ़ने के लिए देंगे, उनके सामने कहानियाँ पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि उनके मन में थोड़ी सी रुचि पैदा हो। मैंने भी अपने बच्चों को आरंभ से ही छोटी छोटी कविताएँ, छोटी छोटी कहानियों के साथ हिंदी से जोड़ा है और वे आज भी हिंदी की गतिविधियों में भाग लेते हैं।
ये तो आपने बहुत अच्छा कहा डॉक्टर काशीनाथ जी। सचमुच पहले हमारे पास ये सब साधन नहीं थे जो आजकल है। टीवी, ये रेडियो, ये सब नहीं था उतना। हम पढ़ते थे, हमारे माता पिता हमें पुस्तकें देते थे पढ़ने के लिए और हम पढ़ भी लेते थे, लेकिन आजकल ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो आप अभिभावक के साथ साथ अध्यापक भी हैं, क्या आप अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने और उनके गृह कार्य देखने तथा उनकी सहायता के लिए समय निकाल पाते हैं?
निकालना पड़ता है, अभिभावक हैं तो निकालना पड़ता है। बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा मार्गदर्शन करना ही पड़ता है। वे जब अपनी कठिनाइयां लेकर हमारे सामने आते हैं तो हम उनको दिखाते हैं कि देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार मेरी बेटियां, विशेषकर क्योंकि मेरा बेटा अब हिंदी नहीं पढ़ता है, वो साइंस साइड से जुड़ा हुआ है और साइंस विषय में पढ़ाई कर रहा है, मेरी बेटियां अभी हिंदी पढ़ती हैं, तो जब भी उनको हिंदी में कुछ कठिनाई होती है, कोई हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे होते हैं, तो मैं उनको जोड़ता भी हूँ और उनको बैठकर जहाँ पर कठिनाई होते हैं तो अंग्रेज़ी में लिखकर या दूसरे ढंग से उच्चारण सुधार सुधार कर उनको सिखाता हूँ, ताकि वे लोग भी थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने खड़ा होकर बोल पाएं।
बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा, यही करना भी चाहिए, सभी अभिभावकों को ऐसा ही करना चाहिए। अब सानवी को स्कूलीय हिंदी पुस्तकों के अलावा अन्य हिंदी की पुस्तकें पढ़ने के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करती हैं?
कभी कभी कुछ कहानियाँ कठिन होती हैं तो मैं उन कहानियों को सरलीकृत करके बच्चों को देता हूँ पढ़ने के लिए, उनके स्टैंडर्ड, उनके मानसिक अवस्था के को ध्यान में रखते हुए मैं कहानियों को सरलीकृत कर देता हूँ, उनको कभी कभी अनुवाद करके देना पड़ता है, तो इस प्रकार बच्चे पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ शब्द बच्चे उच्चरित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हमको अंग्रेजी में लिख कर देना पड़ता है, तो उनमें यह आत्मविश्वास जागता है कि हम कर सकते हैं। दो बार तीन बार ऐसे करते हैं तो अगली बार बच्चे खुद प्रयास करते हैं शब्दों को पढ़ने के लिए।
आप अध्यापक है इसीलिए आप ऐसा कर पाते हैं, लेकिन क्या दूसरे अभिभावक ऐसा कर सकते हैं? पता नहीं,
मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि वे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आजकल हमारे सामने YouTube, Google या कितने ही संसाधन हैं जिससे हम बच्चों को हिंदी या फिर कई दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसमें उच्चारण भी आ जाता है, उसमें पठन भी आ जाता है, बच्चे सुनकर समान रूप से उच्चारण कर सकते हैं, केवल अभिभावकों को गाइड करना पड़ता है।
हाँ, आपने सही कहा। आप दूसरे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
विशेषकर जब मैं हिंदी अध्यापक हूँ, हिंदी से मेरा इतना लगाव है, तो मैं भी कहूँगा कि बच्चों को एक इमाचू स्टेज पर हिंदी छोड़ने से बेहतर है कि उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए वे प्रोत्साहित करते रहें, उनकी कापियां चेक करते रहें, और जहां जहां पर उन्हें कठिनाई होती है वे बच्चों की सहायता करें, या फिर बच्चों से कहें कि जाकर अपने अध्यापक, अपनी अध्यापिका से फिर से पूछो कि यह काम कैसे किया जा सकता है ताकि तुम्हारी कठिनाई कुछ कम हो। इस प्रकार वे उनमें हिंदी सीखने की जो लगन है, जो लगाव है, वह बढ़ता जाएगा।
बहुत सही कहा आपने, बहुत धन्यवाद डॉक्टर काशीनाथ जी।
धन्यवाद बहन जी।
नमस्ते सानवी।
नमस्ते बहन जी।
आपने हिंदी कहानी पठन में भाग लिया था, आपका यह अनुभव कैसा रहा बेटी?
क्षितिज कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पहली बात यह है कि मुझे पुस्तकें पढ़ना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। इतने सारे लोगों के सामने एक कहानी पढ़कर सुनाना मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा। पिताजी कहते हैं, हर जीत की बातें छोड़ो और हिंदी से अपने दिल को जोड़ो। पठन पाठन से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों से सचमुच हमारा दिल हिंदी से जुड़ता है।
बहुत अच्छा कहा बेटी। हाँ, हार जीत की बात तो होती रहती है, ये अलग छोड़ना चाहिए, आपके पिताजी ने बहुत सही कहा। लेकिन लोगों के सामने कहानी पढ़ते हुए उस दिन आपको डर या संकोच नहीं हुआ?
बहन जी, आपको पता है कि इतने सारे लोगों के सामने बच्चों को संकोच होता ही है। थोड़ा संकोच मुझे भी हुआ, किंतु धीरे धीरे डर दूर हो गया। दूसरी बात यह है कि मैं पिताजी के साथ हिंदी और अंग्रेजी के कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हूँ, इससे कुछ आत्मविश्वास आया है। मैं चाहूँगी कि मेरे दूसरे दोस्त और सहेलियाँ भी हिंदी पठन पाठन और लेखन की कार्यक्रमों में भाग लें।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही अच्छी बात है कि यदि आप लोगों के सामने बोलें या पिताजी के साथ जाएं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बहुत अच्छा किया आपने काशीनाथ जी, बच्चों को भी ले जाते हैं।
जी धन्यवाद।
अब सानवी, क्या वह कहानी जो विश्व हिंदी सचिवालय में आपने हिंदी कहानी पठन गतिविधि के अवसर पर पढ़ी थी हमें सुना सकती है?
हाँ,
तो सुनाइए।
आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है कबूतर का घोंसला। कबूतर का घोंसला। किसी पेड़ पर एक कबूतर को जोड़ा रहता था। कुछ समय बाद कबूतर ने उसी पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाने की तलाश में कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। वह भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी, जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गए और वह अंडों को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तब अंडे ना पाकर बहुत परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोंसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई ना खा जाए। कबूतर ने अपने निर्णय के अनुसार तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया, पर उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वह घोंसला बना लेगा, उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी यह सुनकर वापस चले गए। कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा और एक तिनका उधर। उसे समझ में आया कि उसने अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ यह कैसे बनेगा। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी तिनके वही छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की पर उससे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जो काम नहीं आता है उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, आपने बहुत सही ढंग से अपनी कहानी पढ़ी। बहुत धन्यवाद सानवी। तो डॉक्टर काशीनाथ जी और बेटी सानवी, आप दोनों को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। बेटी, मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी हिंदी की पढ़ाई ऊंची कक्षा तक जारी रखेंगी और अन्य हिंदी की पुस्तकें भी पढ़ती रहेंगी। तो श्रोतागण, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को हिंदी की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनके लिए हिंदी भाषा में कहानी की पुस्तकें खरीदें और ग्रंथालय से भी लें। बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें तथा सुन लेने के बाद उनकी प्रशंसा भी करें। तो डॉक्टर काशीनाथ जी तथा सानवी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे क्षितिज कार्यक्रम में भाग लेकर अपने अनुभव का साझा किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। रिकॉर्डिंग में टेक्निकल सहायता करने के लिए मैं अंजू जी को धन्यवाद करते हुए अपने कार्यक्रम को विराम देती हूँ। एक अन्य कार्यक्रम के साथ फिर कभी उपस्थित होऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।
धन्यवाद। एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।